उसकी खोज कब हुई थी? जब यूरोप के लोग भारत की संपत्ति को ढूंढने के लिए निकले थे, जो कोलंबस थे, वो तभी ये ऐसा विचार था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए सोचे कि अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो शायद भारत आ जाए। तभी जब उन्होंने अमेरिका का खोज किया तो वो खोज कर रहे थे इसलिए कि हम वो भारत तक पहुंच सके। और भारत तक पहुंचने के लिए इतनी उत्साह क्यों था उन्हें? क्योंकि भारत इतना धन संपन्न था, इतना धन संपन्न था कि हजारों हजारों सालों तक अलग अलग राज्य से लोग आए और भारत पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे और भारत की संपत्ति लेने का प्रयास कर रहे थे। तो 500,000 साल पहले कितनी संपत्ति भारत में थी, कितनी चली गई, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। पर जो आधुनिक काल में जो संपत्ति छीन ली गई है, जो रॉबर्ट क्लाइव 1750 के समय में जब वे भारत में उन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापन किया, तभी उन्होंने उस समय 4001 पाउंड उन्होंने प्लंडर किए। तो वो जो था, जब वो उस समय का इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो 4 करोड़ पाउंड से भी अधिक हो जाएगा। तो 1901 तक जो अंदाजा लगाते हैं तो 1 बिलियन पाउंड, ये 1 बिलियन अभी हम इन्फ्लेशन की दृष्टि से देखें तो बहुत बढ़ जाता है, 1 ट्रिलियन से अधिक, वह अंग्रेजों ने भारत से लूट लिया था। इसके बावजूद भारत जब 1947 हुआ तो भारत ने बड़ी प्रगति की है, धीरे धीरे क्यों ना हो पर प्रगति की है। तो हम देख सकते हैं ऐतिहासिक रूप से अलेक्जेंडर के समय से जो इतिहास है, जब अलेक्जेंडर को जो ग्रीक से आए, जो पाही यूएसांग जो चाइना से आए, तो वो सब वर्णन करते हैं कि भारत बहुत ही धन संपन्न देश था। और 1800 सदी के समय जो अंग्रेज राजा थे वो कहते थे, मैं भारत के चारों ओर घूमा हूँ और मुझे एक भिखारी दिखा है भारत में। हम ये कल्पना नहीं कर सकते, हमें आज सब भिखारी दिखते। वो कहते हैं कि भिखारी क्यों नहीं थे, 3 कारण बताते हैं। पहला कारण है कि लोग बहुत दानशील है। दूसरा कारण है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो गाय और खेती पर निर्भर है, और गाय और खेती पर जब निर्भर रहती है तो फिर जो नैसर्गिक संपत्ति आती है वो सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और तीसरा कारण बताते हैं वे कि जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसके कारण लोगों में निस्वार्थता का भाव है। पर दुर्भाग्यवश जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इस तरह से विचारधारा हो गई कि भारत की जो भी चीजें हैं वो सब सेकंड क्लास है, और हमें अगर प्रगति करनी है तो पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना है। जरूर पाश्चात्य देश टेक्नोलॉजी है वो हम ले सकते हैं, पर ये टेक्नोलॉजी तंत्र ज्ञान का पीछा करते हुए हमें भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को पूर्ण अधिकांश रूप से हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और इसके कारण इसकी भ्रांत धारणा थी कि हमारे भारतीय संस्कृति में भौतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान नहीं था। पर जैसे रिसर्चर्स संशोधकों ने संशोधन किया है तो भारत में जो वैज्ञानिक ज्ञान था वो भी विशाल था। एनसाइक्लो ब्रिटानिका में कहा गया है कि जो मानवता की प्राचीन शुरुआत है, जो ओरिजिनल क्रेडल लैंड, वो कहाँ है? भारत में है, इंडो मलेशिया वो कहते हैं। तो अभी फिजिक्स में जो प्रगति हुई है, फिजिक्स में प्रगति जैसे हो रही है तो हमारे वेदांत शास्त्रों में, वेदांत सूत्र और उपनिषदों में जो बताया गया है उसमें जो तत्व बताए हैं उसके सामने आ रहे हैं। तो ये प्रोफेसर डेविड ब्रायन जोसेफसन जो है ये दुनिया के सबसे नौजवान नोबेल लॉरेट है, तो वो कहते हैं कि वेदांत और सांख्य में जो मन और चेतना के नियम के बारे में बताया जा रहा है वो हम ज्ञान हमारे विज्ञान को प्रगति कर सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो विज्ञान के एक सिंबल, एक चिन्ह के रूप में हो गए हैं। वो कहते हैं कि भारत ने हमको गिनना सिखाया, और अगर हम गिनना नहीं सीखते तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो बिना सिखाना मतलब क्या कि अभी जो इंग्लिश में नंबर यूज़ते हैं वही हम हिंदी में भी यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4 नोट हो जाते हैं और फिर 10 जब आ जाते हैं तो प्लेस वैल्यू सिस्टम हम कहते हैं, तो वही नंबर को दूसरी जगह पे यूज करना। तो ये जो सिस्टम है ये भारत में डेवलप हुई है। अगर ये जब तक सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी तो हर एक नंबर को गिनने के लिए एक नया चिन्ह बनाना, और ये नया चिन्ह बनाना है तो 100 बोलना है तो 100 चिन्ह हमको याद करने पड़ेंगे, 1000 बनाना है तो 1000 चिन्ह याद करने पड़ेंगे। और अगर हम ग्रीस देखते हैं तो ग्रीस में जो गणित था वो इस प्रकार से ही चल रहा था, और उसके कारण गणित ज्यादा प्रगति नहीं हुई। तो कहते हैं कि हमें जो गणित है वो भारतीयों ने सिखाया है। और एक महत्वपूर्ण चीज हम इस पावर पॉइंट में जिक्र करना चाहूंगा कि कई बार अगर हम कहते हैं कि भारतीय लोग कहेंगे कि हम बहुत बड़े महान हैं तो सारी दुनिया के लोग यहाँ तुम तो बड़े गर्विष्ट हो, तुम कह रहे हो तुम महान हो, सब देश के लोग कहेंगे। इसीलिए जो भी कोर्स मैंने यहाँ पे लिए है ये सब विदेशी साइंटिस्ट के हैं। और एक और कारण है इसके लिए कि आप सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जानते हैं, तो भारत की ये विशेषता है कि भारत में जो बनता है उसका आकर्षण नहीं होता है, पर भारत से देश परदेश जाता है और परदेश से जब वापस आता है तो वही बड़ा आकर्षक बन जाता है। तो उसको कहते हैं री इम्पोर्टेशन, एक्सपोर्ट करना और इम्पोर्ट करना होगा। तो जब हमारे ही महिमा, हमारे ही भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को हम री इम्पोर्ट करते हैं, मतलब परदेश के लोग उसको महान बताते हैं, तो हमें उसकी अधिक श्रद्धा होती है। तो एब्राहम सिजनबर्ग ये गणित के महान हिस्टोरियन है कि गणित की प्रगति कैसे हुई इसके बारे में वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि साधारण जैसे बोलते हैं कि ग्रीस में पाइथागोरस, प्लोटिनस ये सब बड़े गणितज्ञ थे, पर वे कह रहे हैं कि इजिप्ट, बेबीलोनिया, ग्रीक का जो गणित है, ज्योमेट्री जो है, वो सब भारत से आया है। भारत का एक प्राचीन शास्त्र है शुल्ब सूत्र नाम का। तो शुल्ब सूत्र में आप गणित में जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है कि वो हम गणित में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये पाइथागोरस के पहले शुल्ब सूत्र में बताया गया है। और शुल्ब सूत्र क्या ग्रंथ है ये कि जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ स्थली जब बनानी होती है, आजकल तो विवाह यज्ञ होता है, वास्तु शांति यज्ञ होता है, तो छोटा सा खड्डा बनाते हैं घर में या घर के बाहर प्रांगण में और वहां पर यज्ञ करते हैं। पर प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो विशाल यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ भी करने हैं तो उसको विशिष्ट रूप में यज्ञस्थली होती है। कोई यज्ञस्थली रेक्टेंगल होगा, कोई ट्रैपेज़ॉइड होगा, कोई पैरेलल पाइप होगा। तो यज्ञस्थली बनाने के लिए जो गणित चाहिए उसका वर्णन शुल्ब सूत्र में। तो यज्ञ करना जो होता है वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व में बताया गया है, पर उसकी जो स्थली बनानी है वो बड़े ही विशिष्ट रूप से बनानी है। तो वो कैसे बनानी है उसका वर्णन, क्योंकि बड़ा विशाल है, कभी कभी तो ऐसे यज्ञ तो सैकड़ों ब्राह्मण चारों ओर बैठे यज्ञ कर रहे हैं, पर वो इतना बड़ा यज्ञ स्थली है उसको एक त्रिकोण बनाना है, उसको चौकोण बनाना है, तो कैसे बनाना है तो वो शुल्ब सूत्रों में बताया गया है। तो पाइथागोरस वास्तव में, पाइथागोरस के आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम है ही नहीं। तो उसके बाद में एक गणितज्ञ थे यूक्लिड नाम के, यूक्लिड ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि ये थ्योरम मैंने पाइथागोरस से प्राप्त किया है, पर पाइथागोरस के ग्रंथ में नहीं है। और अधिकांश वैज्ञानिक भारत में अभी इस विश्व भर में स्वीकार करते हैं कि पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो उसके पहले शुल्ब सूत्र में आता है, जो बौधायन ऋषि है उन्होंने बताया है। पर उसके बावजूद न तो भारत सरकार ने मांग की है, नहीं ऐसे हुआ है कि वो पाइथागोरस थ्योरम का नाम बदल के उसको बौधायन थ्योरम बनाना चाहिए, सत्य है पर उसको नहीं किया गया है अब तक। और ये लैपलास नाम के ये बड़े महान गणितज्ञ थे, वे कहते हैं कि बता रहे हैं कि जो 10 अक्षर में हम नाम करते हैं वह भारत से ही आया है। और एक और चीज भारत से आई है, जीरो। जीरो ये इतना सरल है पर जीरो बाकी के देश के वैज्ञानिक को पता ही नहीं था, और जीरो के बिना विज्ञान की प्रगति जीरो हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं बौद्धान की स्थिति बता रहा था। तो ये संस्कृत श्लोक है जो बता रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे दीर्घ दीर्घ अस्याक्षणाय रज्जु पार्श्वाणि तीर दमामणि च यत्र पृथक भूते कृत अष्ट अष्ट दुभयान करोती, कि एक रस्सी को आप जब खींचते हो तो दो सिर दो लाइन है, और अगर तीसरे लाइन आपको रस्सी बनानी है तो उसका कितनी मात्रा होनी चाहिए, वो इस थ्योरम बता रहा है। तो जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ टू, उसका भी संस्कृत श्लोक है। तो ऐसे बड़े बहुत सारा ज्ञान है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम जानते हैं, आपने सभी लोग आर्यभट्ट ने शून्य बताया, और ये जो प्रवचन है मैं ये इंग्लिश में आया है, इसमें देता हूँ, तो काफी साइंटिफिक है, मैं उसके बारे में यहाँ पे अधिक चर्चा नहीं करूंगा। साइन, कोसाइन, वर्साइन, इनवर्स साइन, ये सब भारत में पहले इसकी संशोधन हुआ है, क्लिक वैल्यू सिस्टम जो मैंने बताया। श्रीधर आचार्य 8वीं सदी में थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना, अभी ये मैंने इंग्लिश फॉर्मूला बताया है, पर इसके संस्कृत श्लोक है इसके लिए। तो जो ये हुआ भारत का वैज्ञानिक या गणित का ज्ञान, साथ साथ हम आज भी जानते हैं दिल्ली के पास वो जो बड़ी पिलर है, जंतर मंतर, बड़ा पिलर ऐसा है कि ऐसे आयरन का, ऐसे लोहे का बनाया है कि उसको जंग नहीं लगती है। और वैज्ञानिक जो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक जो संशोधन करते हैं, तो बोलते हैं कि ऐसा दुर्लभ एलॉय है, ये दुर्लभ संगम है धातुओं का, कि वो आज भी बनाना बड़ा मुश्किल है। और आज का तंत्र ज्ञान भी ऐसा जंग लगने वाला लोहा नहीं बना सकता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी जीवन के प्रमाण है। तो ऐसे अनेक प्रमाण हम देख सकते हैं। जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे एक जगह है ढोलगीर नाम का, तो ढोलगीर में एक बहुत विशाल डैम है। वो डैम लगभग 3500 साल पुराना है, और उस प्रकार का डैम उस समय के इतिहास में कहीं भी नहीं है। पर यद्यपि वो डैम ढूंढ चुका है, उसका वो देखा उतना ही प्राचीन है, पर क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में है, तो वैज्ञानिकों को उसका संशोधन करने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है। नहीं तो जो इतिहास है उसकी पूरी जो विचारधारा है बदल जाएगी। इतनी प्राचीन काल में एक संस्कृति व्यवहारिक विज्ञान व्यवहार रूप में हम प्रदर्शन कर सकते हैं, तो अप्रतिम है। ठीक उस तरह से द्वारका के तट में कई बार जो पाश्चात्य देश से लोग आए, वो उनके जो पंडित थे, इंडोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे रामायण महाभारत सब काल्पनिक है, ये सब माइथोलॉजी है। पर द्वारका के तट में जो बेट द्वारका है, उसके बाजू में प्रोफेसर राव आदि प्रोफेसर ने वो जब सागर के अंदर संशोधन किया, तो उनको पता चला कि वहां पे द्वारका है। तो जो महाभारत में वर्णन है, कि किस तरह से द्वारका शहर था, द्वारका के नागरिकों में किस प्रकार के बिल्ले हुए करते थे, वो किस प्रकार के जैसे ग्लास है या खाद्य के प्लेट है, किस प्रकार के बिल्ले खाते थे, उसी प्रकार के जो चीजें हैं इस द्वारका के पास के सागर में मिली। और साथ साथ ये भी वर्णन आता है कि जब महाभारत के अंत में सागर है द्वारका पे, द्वारका को ढक लिया, तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो द्वारका के तट में ये मिलना स्वाभाविक था। पर भारत ने अभी तक संशोधन किया नहीं, संशोधन किया तुरंत मिल गया। ठीक उस तरह से महाभारत में बहुत सा आध्यात्मिक ज्ञान है, पर उसके साथ बहुत सा वैज्ञानिक ज्ञान भी है। जिस तरह से कलयुग का जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, उस समय आसमान में नक्षत्र किस प्रकार के थे, कौन से तारे कहाँ थे, उनकी क्या श्रृंखला थी, उसका वर्णन है। उस तरह से कलयुग की शुरुआत जब हुई, तो ऐसे बताया जाता है कि जो छह तारे ये ग्रह हमको दिखते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, जो छह ग्रह हमको दिखते हैं, और सूर्य और चंद्र ये आठ, और भारत और पृथ्वी ये नौ एक लाइन में आ जाते हैं। और जब एक लाइन में आते हैं तब कलयुग शुरू होता है। तो जब वैज्ञानिक अभिवैज्ञानिक कंप्यूटर से ऐसा संशोधन कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि हर एक ग्रह कितनी रफ्तार से चल रहा है और अभी कहाँ है, तो कंप्यूटर में अगर हम प्रोग्राम डालते हैं तो इस प्रकार का जो ग्रह की रचना है कि सारे नौ ग्रह एक लाइन में कब आते हैं, तो उनको बराबर पता चलता है कि 3102 साल में, 3102 BC, उस समय में ये इस प्रकार के पांच नौ ग्रह एक लाइन में आए थे। और वही हमारे रविशास्त्र बताया कि जो कलयुग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई है। तो इस तरह से वैज्ञानिक रूप से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो ब्रांच है इसको आर्कियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो अंतरिक्ष का अध्ययन, आर्कियोलॉजी मतलब पूर्व इतिहास का अध्ययन। तो अंतरिक्ष के द्वारा जो पूर्व इतिहास का अध्ययन करते हैं उसको आर्कियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो थॉरे ये महान थिंकर है, विचारवान थे अमेरिका के, वो कहते हैं कि मैं सब धर्मों का अध्ययन किया पर सब धर्म असंकीर्णवादी है। वो कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि आप जीसस को स्वीकार कर लो आपका उद्धार हो जाएगा, मुस्लिम लोग कहते हैं कि आप मोहम्मद का स्वीकार कर लो आपका उद्धार हो जाएगा, पर जब मैंने वेदों का अध्ययन किया तो मैंने ऐसे कोई संकीर्णवाद को नहीं देखा। वेदों में मैंने क्या देखा कि ये विश्वव्यापी ज्ञान है। और जब वेद बताते हैं कि आप शरीर नहीं है आप आत्मा है, तो ऐसे नहीं है कि केवल हिंदू लोगों में हिंदू लोग शरीर नहीं आत्मा है और मुस्लिम लोग शरीर है। जो वैदिक शास्त्र में ज्ञान है वो विश्वव्यापी ज्ञान है। और जो वैदिक शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है श्रीमद् भगवद् गीता। भगवद् गीता के बारे में ये थोड़े के ही साथ में उनके पुत्र एक और अमेरिकन विचारवंत थे, राल पैडो इमर्सन। वो कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ी तो ऐसा लगा कि कोई शहंशाह बात कर रहा है, ऐसा शहंशाह जो राजनीति में शहंशाह नहीं है, बुद्धि में शहंशाह है। और सारे जो अलग अलग तत्वज्ञान के प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों का उत्तर उसको पहले से ही पता है, और ये बड़े आसान के उत्तर दे रहा है ऐसे जो हम कभी सदियों से भी तो सोचते रहे पर नहीं मिलेगा जवाब। और उसके अंदर एक और चीज कहते हैं कि जब मैं गीता उपनिषद पढ़ता हूँ तो जो पाश्चात्य देश के ग्रंथ है, शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो या टेनिसन हो, उन सब के ग्रंथ जो है वो मुझे छोटे बच्चों के रोने और हंसने जैसे लगते हैं। उसमें जो उसमें भी कुछ बुद्धिमत्ता है, कुछ विद्वत्ता है, पर वह वैदिक शास्त्रों की विद्वत्ता की तुलना में बहुत कम है। तो वैदिक शास्त्रों की जो विद्वत्ता है वो है क्या वास्तव में? तो जो आर्नल्ड टॉइनबी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कह रहे हैं। ये बड़े हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, कहते थे ब्रिटेन भारत पर राज्य कर रहा था, पर ब्रिटेन में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जानते थे कि भारतीय संस्कृति उनसे बहुत बड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जो विश्व के इतिहास में एक अध्याय था जो आधुनिक युग का अध्याय, उसकी शुरुआत पाश्चात्य देशों से हुई है, पर इस अध्याय का अंत जो होगा वो भारत के इतिहास के अंत होगा, भारत के द्वारा अंत होगा। अगर भारत के द्वारा अंत नहीं होगा तो जो अंत होगा वो विश्व के स्व विनाश में अंत होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में अंत होगा। तो अगर विश्व का उद्धार होना है तो केवल भारत के मार्ग से उद्धार होगा। तो भारत का मार्ग से उद्धार होगा वो क्या है? जो अमेरिका के एक राजनैतिक नेता थे मार्टिन लूथर किंग, वो कहते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन की विडंबना क्या है। वो कहते हैं कि इन आवर एज ऑफ साइंस वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड डिसगाइडेड मैन, कि हमने जो शस्त्रों है शस्त्रों को नियंत्रित करने का बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, पर जो मानव को संयोजन करना, नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना, उसमें हम पूर्णतः गुमराह हो गए हैं। वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड डिसगाइडेड मैन। और इसका ज्वलंत रूप है जो 9/11 में जब ट्विन टावर में अमेरिका में जो विमान गए, तो विमान तो बड़े शक्तिशाली है, तत्वज्ञान का एक मूर्तिमान रूप है, वो गाइडेड मिसाइल के रूप में थे और उसके नियंत्रण में थे मिसगाइडेड मैन। तो ये क्या मतलब है जो कह रहे हैं, क्यों हम ऐसे परिस्थिति आ गई है दुनिया में कि हम तत्वज्ञान के द्वारा बाह्य जगत, बाह्य चीजों को काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, पर क्या गलत हो रहा है, क्या कमी हो रही है कि हमारा अंतकरण है, हमारा जो मन है उसका नियंत्रण करना, उसके बारे में हमें मार्ग पता नहीं है। और अभी मेरे पहले जब भारत की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम देख रहे थे कैसे है कि उल्लेख हो रहा था कि भारत के कई नेता जो है वो भारत की संपत्ति को हड़प रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जो आध्यात्म है उसका हमारे आजकल के जीवन से क्या संबंध है? हमको हमारा परिवार को संभालना है, हमको बिजनेस चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, तो आध्यात्म इसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, क्या योगदान कर सकता है? तो श्रीमद् भगवद्गीता में 16वें अध्याय में 20वें और 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं दाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेकत्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं कि नरक के तीन द्वार है त्रिविधं, और क्या द्वार है? काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको त्याग कर देता है। तो अभी इस भौतिक जगत के परे एक नरक भी है जहाँ पे अगर कोई बहुत कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति होगा वो जाएगा, पर ये काम क्रोध लोग ऐसे है कि ऐसे अनर्थ है, ऐसे अंदर के रिपू है, हमारे शत्रु है, कि वो हमारे इस दुनिया को भी नरक बना देते हैं। और अगर हम आज के समाज की समस्याओं के बारे में विचार करेंगे तो उस समस्याएं जो है उनको हम तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या में से एक है। तो भ्रष्टाचार क्यों होता है? लोभ के कारण होता है। जब व्यक्ति अत्यधिक लोभी हो जाता है तो फिर वो जो संपत्ति है उसे संतुष्ट नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के लिए एक लेख लिखा था फेटल पैट नाम का, तो तभी थोड़ा संशोधन कर रहा था, तो पता चला कि जो पूरे भर में 800 मिलियन लोग जो है 800,000 पीपल वो भूख से तड़पते हैं, उनको तो खाने को कम मिलता है, पर जो 1 मिलियन पीपल जो है वो ओवरवेट है। ओवरवेट है मतलब क्या? और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति का वर्णन आ रहा था कि वो व्यक्ति 6 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला। क्यों घर से बाहर नहीं निकला है? क्योंकि वो व्यक्ति का शरीर इतना मोटा है कि उसके शरीर के घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, ये दुर्भाग्य है। तो जरूर हमको सबको खाने के लिए चाहिए, पर जो व्यक्ति जब आत्मनियंत्रण नहीं होता है तो क्या करता है? वह एक्सप्लॉइट मोर नेसेसरी, शोषण करता है। और ये शोषण एक तो बहुत ही स्थूल और नगण्य रूप से ज्यादा खाने में है, पर ये ज्यादा खाने से ज्यादा है कि पैसे के लोभ होता है, जायदाद के लोभ होता है। और धन संपत्ति अर्जित करना कोई गलत चीज नहीं है, पर इस तरह से करना कि दूसरों का शोषण हो वह लोभ के कारण होता है। और जो स्विस बैंक ने आप सब जानते हैं जो रिपोर्ट डाले बताया है कि भारत कोई गरीब देश नहीं है। भारत में भारत की ओर से स्विस बैंक में जितना पैसा है वो दूसरे किसी भी देश में ज्यादा हुआ नहीं है। तो ये लोभ के कारण हो रहा है। तो सारे विश्व भर में लोभ है, ठीक उसी तरह से हम देखते हैं हिंसा है पूरी दुनिया भर की। हिंसा के कारण लोग हत्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, युद्ध करते हैं। हिंसा क्यों होती है? क्रोध के कारण होती है। और ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों के प्रति अत्याचार होता है और उनके प्रति गुनेह होते हैं, वो सब क्यों होते हैं? लोभ के कारण होते हैं। और अगर आप देखेंगे अखबार, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री के लिए लेख लिखता हूँ, तो उसके जो एडिटर है वो ये बता रहे थे कि हम जब अखबार लिखते हैं तो अखबार में तीन चीजें ही आती है। अखबार का न्यूज क्या होता है? तीन चीजें, डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड डिसीट। कि डेथ मतलब मृत्यु, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और डिसीट मतलब बेईमानी। अगर आप चर्चा करोगे तो वही होता है। तो बोले कि इसीलिए जब हम अखबार लिखते हैं, अखबार छापते हैं, तो हम अखबार छापने से क्या होगा? लोगों के मन और विलीन हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये आध्यात्मिक कॉलम चालू किया है कि वो आध्यात्मिक थोड़ा ज्ञान करके लोगों का मन शांत हो जाए। तो मैंने उनको पूछा था आपने आध्यात्मिक कॉलम चालू कैसे किया, तो ये उन्होंने कारण बताया मुझे। तो पॉइंट ये है कि समाज में आज जो समस्याएं है उन सबका जड़ क्या है? हाँ जरूर ज्ञान हजार ने जो किया है बहुत अच्छा है, लोकपाल बिल आ जाएगा, उन्हें जो लोग ही राजनीतिक है उनको सजा दी जाएगी, अच्छा है, पर उसका जो मूल है वो है लोभ। और लोभ क्रोध काम, जब तक हम इनको कम नहीं करेंगे तब तक समाज की प्रगति होना मुश्किल है। और ऐसे नहीं कि केवल भारत में, वास्तव में जो पाश्चात्य संस्कृति है वह इनको सिस्टमैटिकली नियोजित पद्धति से और बढ़ाती है। तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में जो टीवी सीरीज होते हैं, मूवीज होते हैं, उससे काम वासना बढ़ाई जाती है, उससे क्रोध बढ़ाए जाते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, अधिकांश विज्ञापन जो चीजें जरूरी नहीं है उसके बारे में ही होते हैं। कोई विज्ञापन राइस दाल सब्जी बात के बारे में नहीं होता है, वो तो लोग खरीदने ही वाले हैं वैसे भी। तो काम क्रोध लोग अगर ये कम हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएंगे, तो समाज की अधिकांश समस्याओं का हल हो सकता है। पर काम क्रोध लोग इनका नियंत्रण कैसे हो सकता है? विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, पर अगर आप सब माता पिता है, अगर आपका कोई बेटा है क्रोध हो जाता है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर मुझे एक दवाई दे दो जिससे कि मैं इसका क्रोध को शांत कर दूंगा? जब गुनहगार होते हैं, कोई पागलों के अस्पताल में कोई पागल लोग क्रोध हो जाते हैं, तो किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो क्रोध को कम कर सके। हम सब जानते हैं कि क्रोध जब हो जाता है हमें, तो हम क्या करते हैं? ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो बाद में हम पछताते हैं। पर ऐसी कोई दवाई विज्ञान के पास नहीं है जिससे कि हम क्रोध को कम कर सकते हैं। अभी एक ज्यादा जो बीमारियां हैं वो बहुत हमारे देश और विश्व के भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पर एड्स क्यों होता है? क्योंकि काम वासना जो है नियंत्रण है। तो ये आधुनिक संस्कृति जो है वह काम क्रोध लोग को बढ़ाती है, और टेक्नोलॉजी जो है तंत्र ज्ञान यह आपको इसको नियंत्रण करने के लिए कोई मौका नहीं देता है। मेरा जो भाई है अमेरिका में पढ़ रहा है मिशिगन में, तो मुझे अभी एक प्रसंग बता रहा था कुछ साल पहले। आप जानते हो कि वर्जीनिया टेक नाम का एक कॉलेज था, वहां पे वर्जीनिया जैसे भारत में IIT होते बहुत बड़े कॉलेज में आते, वहां पे ऐसे अमेरिका में आईवी लीग कॉलेज होते हैं। तो वर्जीनिया टेक में एक लड़का था, उसने बंदूक ले ली और सबको गोलियां मारने लग गया, और एक उसमें भारतीय लड़की भी थी, एक भारतीय प्रोफेसर भी था, और ऐसे बहुत से लोगों को गोली मार दी, फिर खुद को गोली मार दी। और यह प्रसंग कई बार हो चुका है, और यह प्रसंग जब हुआ तो अमेरिका में बहुत उसके बारे चर्चाओं में लग गई। तो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी वहां पे गए थे इनका खेल व्यक्त करने के लिए। तो अमेरिका में कैसे है कि साधारण लोग भी बंदूक रख सकते हैं नियम के अनुसार। सोचते हैं कि अगर चोर आ जाएगा तो चोर के पास बंदूक होगा, आपके पास बंदूक नहीं होगा, तो हमें बंदूक रखना चाहिए, तो बंदूक रखते हैं। तो उसी कारण ये इस लड़के के पास बंदूक था। तो फिर तो अमेरिका के जो अखबारों में इस विषय पर चर्चा हुई कि इस प्रकार की घटनाएं हैं, वो तो एक अकलौती घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसे हो चुकी है पहले। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, उनके बारे में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जो उसका सुझाव बताया, उसका जो हल बताया, वह बड़ा आश्चर्यकारक। उन्होंने क्या बताया कि हमें सब विद्यार्थियों को कॉलेज में गन देना चाहिए। क्या क्यों ऐसे बोले कि अगर कोई विद्यार्थी से पागल हो जाएगा, गोली मारेगा, तो ज्यादा लोगों को गोली मारने के बदले हम उसको गोली मार देंगे। पर ये सारे लोग अगर पागल हो जाएंगे तो सब एक दूसरे गोली मारेंगे, रोकेगा कौन किसको? तो जो आधुनिक संस्कृति के आधार पर जो हल आते हैं तो बहुत बाहरी है। जैसे हम जानते हैं IIT सबसे बड़ा, सबसे नामवंत इंस्टीट्यूट है। तो मैं IIT में कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट के लिए गया था, वहां पर IIT के प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि IIT में भी हर 6 महीने में आत्महत्या होती है, एक दो विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। तो अधिकांश जो आत्महत्या करते हैं वो कैसे करते हैं? फैन से कुछ पटंगा लेते हैं और फिर फैन को चालू कर देते हैं। तो ऐसे दो आत्महत्या एक बार IIT कानपुर में हुई, तो उसके बाद सारे IIT लोगों की मीटिंग हुई और उन्होंने चर्चा की कि हमें क्या करना चाहिए, ये तो भारत का भविष्य है, और भारत के भविष्य जो है आदर्श विद्यार्थी आदर्श नागरिक बनेंगे वो आत्महत्या करते हैं, रोकना चाहिए। तो उन्होंने जो प्रस्ताव सबने मिलकर यूनानिमसली पास किया, क्या प्रस्ताव था? कि हॉस्टल से सारे फैन निकाल के हॉस्टल में एयर कंडीशन लगाना। अभी हम विचार कर सकते हैं कितना बाह्य हल है, कितना बाह्य हल है ये कि फैन के कारण व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर रहा है। व्यक्ति अंतरंग रूप से हताश है, अंतरंग रूप से मन की भावनाओं के मन के वेग पर नियंत्रण नहीं है, इसके कारण वो आत्महत्या कर रहा है। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है यह एक विज्ञान है जो सिखाते हैं हमें कैसे हम अंतरंग नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में हम सब आत्मा हैं, और जो आत्मा है आध्यात्मिक चीजों में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक चीजों में भी आनंद मिलता है, पर वो जो आनंद है वो बाह्य है। बाह्य है मतलब अभी आप सबका छोटा बच्चा होगा, अगर बच्चे को हंसाना है तो हम क्या करते हैं, उसके पेट में गुदगुदी करते हैं। जब गुदगुदी करते हैं तो वो हंसने लगता है, हंसने लगे आप, तो क्या वो आनंद ही है वास्तव में? क्या गुदगुदी जो है वो आनंद नहीं है? अगर गुदगुदी आनंद होती तो फिर हम सब आनंदी होने जाते, हम सब खुद का एक गुदगुली मशीन रख लेंगे, सब गुदगुली करते रहेंगे, सब हमेशा खुश रह जाएंगे। वो बिल्कुल बाह्य है, वो जो गुदगुली के कारण हंस रहे हैं वो हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो केवल बाह्य रूप से थोड़ा शारीरिक हमको सिमुलेशन करता है, शारीरिक संवेदना करता है, उससे हम थोड़ा हंस देते हैं। तो जो भौतिक आनंद है वो ऐसे ही है, भौतिक आनंद जो है वो चाहे नाचने में हो, गाने में हो, पार्टी में जाने में हो, वो सब हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते। उसमें बुरा भले ही कुछ ना हो पर हृदय को वो स्पर्श नहीं करते हैं, हृदय को आनंद नहीं देते हैं। और ये दुर्भाग्य कैसे होता है, ये जो एनालॉजी, ये जो प्रवचन का प्रधान है, आप में से कुछ डॉक्टर हो गए, आप सब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो अगर बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पेन किलर नाम की दवाई देते हैं। तो पेन किलर से वास्तव में हम ठीक नहीं होते हैं, भले ही पेन किलर से हमको राहत मिल जाती है पर अंदर जो बीमारी है वो और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। जो एक्चुअल दवाई है वही बीमारी को ठीक करता है, वो एंटीबायोटिक हो सकता है या कोई और प्रकार का दवाई हो सकता है, पर पेन किलर से ऐसा लगता है कि राहत मिल रही है। तो जो आधुनिक तंत्र ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, वो अलग अलग प्रकार से मनोरंजन प्रदान कर सकता है, पर ये मनोरंजन जो है ये केवल पेन किलर है। और जो असली दवाई है वो है आध्यात्म, वो है भगवत भक्ति। तो क्या होता है, जब मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो उससे लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो कुछ आनंद मिल रहा है, पर वो क्षणिक होता है। पेन किलर का क्या प्रभाव होता है, उस समय दिन लगता है ठीक हो गया हूं मैं, पर कुछ समय के बाद पुनः दर्द होने लगता है। तो हम देख सकते, और पेन किलर का एक और गुण है कि अगर बार बार अगर व्यक्ति पेन किलर लेते रहता है तो अंदर से जो बीमारी है वो और बढ़ रही है, और इस कारण पेन किलर का डोजेज और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसा परिस्थिति आएगा पेन किलर काम ही नहीं करेगा। तो हम अगर देखेंगे मनोरंजन है, क्रिकेट है, मूवीज है, अगर हम देखेंगे तो 30-40 साल पहले जब जो सिनेमा हुआ करते थे उसमें क्या थोड़ा डिशुम 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 हुआ करता था, पर आजकल के मूवी देखेंगे तो एक बड़ा इमारतों का बूम उड़ा देते, फिर बोलते मजा आ गया। क्यों? क्योंकि तो पेन किलर का डोजेज और बढ़ाना पड़ रहा है, हृदय जो है और खाली होते जा रहा है। क्यों खाली जा रहा है? कि हम भगवान से दूर जा रहे हैं, भक्ति से दूर जा रहे हैं, इसीलिए बाहर से जो प्रलोभन है, जो मनोरंजन है, उसको और राजसिक बनाना पड़ रहा है। जो कुछ साल पहले संगीत हुआ करता था वह थोड़ा सुरमय शास्त्रीय था, पर आजकल के संगीत जो है रॉक बूम 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 बूम, तो उसमें वास्तव में कुछ रस नहीं है। पर क्या है, व्यक्ति अंदर से इतना खाली है कि कुछ तो भी चाहिए बाहर से। वे लोग हॉरर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी का मतलब क्या है, वो देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे, पर हृदय अंदर से इतना खाली है कि कुछ तो भी मनोरंजन चाहिए, भले ही भय ना आ जाए, कुछ तो संवेदना चाहिए, कुछ तो इमोशन चाहिए। अगर हम क्रिकेट भी देखते हैं, कुछ साल पहले फ्राइडे मैचेस हुआ करते थे, उससे कुछ राहत मिलती है जीवन की परेशानी से, जीवन के बोर्डम से, पर क्या है, वो पेन किलर है, पेन किलर काम नहीं करता है। इसीलिए वनडे मैच थोड़ा और जो एक्साइटमेंट है रोमांच बढ़ा दिया, और फिर वनडे मैच से भी काम नहीं चलता है, पेन किलर और बढ़ा दो, फिर क्या T20 मैच आ गए, T20 से भी काम नहीं चल रहा है, IPL चालू हो जाएगा। तो क्या है, ये पेन किलर की श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे, वास्तव में कुछ राहत नहीं मिलने वाली। पर अगर हम भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से आनंद मिल जाता है। जैसे मछली होती है, मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं उसके बाद में जो भी देंगे उसको, हम उसको स्वादिष्ट खाद्य दे देंगे, उसके हमें टेलीविजन रख देंगे, उसके आजू में हम आराम कुर्सी रख देंगे, कुछ खाएंगे, उसको सबसे पहले पानी चाहिए। जो आत्मा है उसकी सबसे प्राथमिक जरूरत है भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति के बिना जो आत्मा है वो उसी तरह से तड़पता है जिस तरह से मछली पानी के बाहर तैरती है, और जब आत्मा भगवान के करीब में आ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे आत्मा संतुष्ट हो जाता है। जो संतुष्ट हो जाता है तो वो संतुष्टि न केवल स्वयं उत्पन्न कर अनुभव करता है पर औरों को भी प्रदान कर सकता है। तो भारत की जो विशेषता ये है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह भारत में बहुत रेडी अवेलेबल है। तो मैं एक कहानी बताऊंगा, ये दिस इज मेटाफोरिकल स्टोरी, ये वास्तविक कहानी नहीं है, पर ये और ये जो तत्व है उसको उजागर करती है। तो एक बार भारत के महान संत थे, वे इटली चले गए, वहां के जो पोप है क्रिश्चियन के सबसे हेड थे, शहर के सबसे बड़े, उनसे मिलने। तो जब उनके बात कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उस पोप के सामने दो फोन है, एक साधारण फोन था, एक कुछ अजीब फोन लग रहा था। तो ये फोन क्या है? बड़ा विशेष फोन है, इसे भगवान से बात कर सकते हैं। अच्छा, भगवान से बात कर सकते हैं? तो क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। मैंने फोन लगा लिया, फिर भगवान से बात किया, प्रणाम किया प्रभु को, उनके गुणगान किया और फिर फोन रख दिया। और फिर उन्होंने बोला, कितना बिल हुआ? बिल बिल वगैरह कुछ नहीं, आप हमारे अतिथि है, बिल लेने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था फोन लगाओ। तो बड़ा फोन आपने लगाया, बोलो कितना बिल हो गया? तो बोले कि $500 मैं दे दिया। तो कुछ साल के बाद ये पोप भारत में आए, ये संत के आश्रम में, और उन्होंने देखा यहाँ पे दो फोन है, दूसरा फोन क्या है? ये फोन भगवान से बात करते हैं। अच्छा, तो भगवान से बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। तो उन्होंने फोन लगाया, फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बात किया, थोड़ा बहुत गुणगान किया, फिर हो गया। तो फिर वो बोले, कितना बिल हुआ बताओ मुझे? तो पोप बोले, बोले कि वास्तव में आपको देने की जरूरत नहीं, आप हमारे अतिथि है। नहीं, जब आप आए थे तो आपने बिल किया था, हमसे भी देना था। कितना बिल हुआ बताओ? तो ₹2। इतना कम पैसे? बोले भारत से भगवान को लोकल कॉल मिलता है, भारत से भगवान को लोकल कॉल मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में भारत से भगवान बहुत करीब है। इसीलिए भगवान जब आते हैं वो अयोध्या में आते हैं, वो वृंदावन में आते हैं, और इसे महान संत भारत में आते हैं। और अगर आज भी हम जगन्नाथपुर में यात्रा कर जाते हैं तो भगवान के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। तो हम भगवान के बहुत करीब है। और जो अनेक संत पुरुष आए, वो भगवान का संदेश न केवल भारत में, सारे विश्व भर में प्रचार किया। तो जो भारत के संस्थापक आचार्य थे, ये भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, तो वो कहा करते थे कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में, पर वास्तव में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट। हम स्वतंत्र रूप से परतंत्र बन गए। परतंत्र बन गए मतलब क्या? कि हमने क्या किया? पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य तंत्रज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य नीति मूल्य, ये सब स्वीकार किया। भारत के आध्यात्मिक खजाने को हम भूल गए। तो भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद 1965 में, वे अकेले जब 69 साल के थे, बिना किसी पैसे के, उनके पास 40 रुपए थे सिर्फ, वो अकेले अमेरिका चले गए एक शिप में, जलदूत नाम थे। और जब वो अमेरिका गए, 40 रुपए तभी डॉलर नहीं थे, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, जब अमेरिका जा रहे थे तब उनको दो हार्ट अटैक हुए। जब अमेरिका में पहुंचे, अब कहां जाना है, लेफ्ट में राइट में कुछ पता नहीं था। तो एक महीना न्यूयॉर्क में रहे, बटलर में रहे, फिर एक महीना न्यूयॉर्क में रहे और अलग लोगों से मिल रहे थे। और फिर कुछ लोगों ने थोड़ा भक्ति में रुचि प्रदर्शित की तो कुछ सिखा रहे थे। तो उनका ही एक विद्यार्थी था, वो ड्रग के प्रभाव में पागल हो गया और उनसे आक्रमण करने आए। वो 70 साल के वृद्ध व्यक्ति थे और वे जब भारत में थे तो उन्होंने भागवत को जब ट्रांसलेट किया था, तो भागवतम जो भागवत पुराण है उसके पहले ग्रंथ को, तो लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन जो भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे, उन सबको दिया था। उन सबने उनकी सराहना की थी, उन बहुत अच्छा विद्वान थे। तो वो सब छोड़ के अमेरिका चले गए थे भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। पर ये अभी बिल्कुल असह्य थे, ये पागल अमेरिकन युवक उनके आक्रमण करने आ गया और उसको प्रभु श्री कृष्ण पर हमें पूर्ण श्रद्धा है। और फिर वे आज भी जो अगर आप न्यूयॉर्क में जाते हैं, एक टॉम्पसन स्क्वायर पार्क में उनका बगीचा, वहां पे वो एक बगीचे में जाकर बैठते हैं और उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली और कीर्तन चालू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया तो वहां पे बगीचे में बहुत से युवक आ रहे थे, युवक युवतियां हंसी मजाक कर रहे थे और वो इस ध्वनि से आकर्षित हो गए। शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणगान करता है तो उस ध्वनि में दिव्य शक्ति होती है, वो आकर्षित हो गए, वो आके बैठ गए, वो उनके साथ कीर्तन करने लग गए, उसको दोहराने लग गए और वो सब भक्त बन गए। और प्रभुपाद जी ने 1965 में जब वहां पे गए, वो जो उस पेड़ के नीचे जब उन्होंने वहां पे बैठ के उन्होंने चालू किया कीर्तन, आज भी न्यूयॉर्क में वो पेड़ है और उस पेड़ को न्यूयॉर्क सरकार ने हरे कृष्णा चिन्ह बता दिया है, उसे प्लाकर लिखा है कि यहाँ से इस पेड़ से हरे कृष्णा आंदोलन की शुरुआत है। और फिर वहां से लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को, अलग अलग जगह गए और प्रचार करने लगे और 1965 से 1970 12 साल तक उन्होंने प्रचार किया। तो इन 12 साल में उन्होंने सारे विश्व के 14 बार भ्रमण किया, 14 बार, और सारे विश्व में 108 मंदिर बनाए, लाखों के लोगों और यात्रा में लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित किया, हजारों शिष्य हुए उनके, उन्होंने स्वयं 60 से अधिक ग्रंथ लिखे। अब भारत में आए तो जो परदेशी लोग थे, जो परदेशिया स्त्री है वो साड़ी पहनी थी, परदेशिया पुरुष थे वो धोती कुर्ता पहने हुए थे और सारे भारत में आश्चर्य हो गया। जब बम्बई में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ तो बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आया कि भारत को परदेशी लोगों ने इतने बार जीत लिया है, पर हमें लगता है कि भक्तिवेदांत स्वामी ने जो हरे कृष्ण आंदोलन चालू किया है इससे भारत सारे विश्व को संस्कृति के और आध्यात्म के द्वारा जीत लेगा। अब फिर भारत में आकर उन्होंने स्वयं इसी कलकत्ता में सुंदर राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की, वृंदावन में विशाल मंदिर बनाया, कलकत्ता के पास में मायापुर जो है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बनाने की योजना बनाई। और फिर आज जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो 600 केंद्र है सारे विश्व में और लगभग हर एक देश में है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ साल पहले एक एडिटोरियल आया था, संपादक आया था कि बोले कि द रिबर्थ ऑफ कृष्णा, कृष्ण का पुनर्जन्म उसका शीर्षक था। और उसे बता रहे थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक कि हम कहते हैं कि भारत ने बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया है सारे विश्व का, तो भारत का नंबर वन एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत ने क्या किया है। कुछ लोग आज आते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि शायद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजे हैं, कुछ लोग कहेंगे इंडियन स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लिश जो है वो चीप लेबर है अमेरिका में बाकी देशों में बोलेंगे, पर वो अगर आप कंपूचिया में जाएंगे, कंबोडिया में जाएंगे, बोट्सवाना में जाएंगे, पनामे में जाएंगे तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोई अंग्रेजी बोलने वाले इंडियंस नहीं मिलेंगे, पर वहां पे भी कृष्ण मंदिर है। तो कृष्णा इज इंडिया नंबर वन एक्सपोर्ट कॉमोडिटी, कृष्णा ये भगवान है, सर्व आकर्षक भगवान है, इतना मनोहर है, वो बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख है और सबके हृदय को आकर्षित कर लेते, सारे विश्व भर में हर जगह में आज कृष्ण मंदिर है और लोग वहां पे जाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और जप करते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। और जो भगवदगीता का संदेश है वह सारे विश्व भर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आज उसको पढ़ा जा रहा है, उसका श्रेय श्री प्रभुपाद जी के जो त्याग है और उनका प्रचार है उसके लिए। प्रभुपाद जी भारत में आते थे वो कहते थे कि भारतवासियों से कई बार कि जो भारतवासी है वो रत्नों पे बैठे हैं और कांच की भीख मांग रहे हैं, रत्नों पे बैठे हैं और कांच की भीख मांग रहे हैं, क्यों? कि जो आध्यात्मिक धन है ये रत्न के समान है और जो भौतिक तंत्र ज्ञान है वो कांच के समान है, उसका मूल्य नहीं ऐसे नहीं है पर उसका मूल्य बहुत कम है। अब प्रभुपाद जी बोला करते थे कि हम पूर्व पश्चिम का संगम कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये संगम? तो कहते हैं कि पाश्चात्य देशों ने तंत्र ज्ञान में बहुत प्रगति की है और भारत में आध्यात्म बहुत है, तो अगर दोनों साथ में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऑफ द बेस्ट एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द बेस्ट, तो फिर विश्व के इतिहास में एक नई श्रृंखला आ सकती है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने जो बहुत से केंद्र बनाए उसमें बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सुंदर, जब दिल्ली में जो मंदिर बनाया उन्होंने तो उसमें कृष्णा और अर्जुन के रोबोट्स हैं और कृष्णा जो श्लोक बोलते हैं भगवद्गीता में वो कृष्णा का रोबोट बोले
श्री भगवान वाच ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन।
और जो अर्जुन का रोबोट है वह अर्जुन के बारे में श्लोक बताएगा। तो इस तरह से एनिमेट्रॉनिक्स का एग्जीबिशन जो दिल्ली में बनाया था उस समय, जो 1998 के समय था, उस समय तो जब तभी भारत के अध्यक्ष वाजपेयी जी थे वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि आज हम लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो बोले हम सब कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, पर हमारे पहले ही भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद जी ने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। किसका ग्लोबलाइजेशन किया? भगवद गीता के ज्ञान का ग्लोबलाइजेशन। तो प्रभुपाद जी लंदन में गए थे एक बार प्रचार के लिए, तो तभी लंदन के एक रिपोर्टर एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो थोड़ा अहंकार सवाल था, क्योंकि वो उसका भाव था कि हम अंग्रेजों ने आप पे राज किया, आप हमें क्या सिखाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि जब आप अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे तो भारत की असीम मात्रा में आपने संपत्ति लूट ली, पर हमारा धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। तो आपने भारत की बहुत ही संपत्ति लूट ली, पर भारत की जो सबसे मौल्यवान संपत्ति है वो लेना आप भूल गए। तो जो आप भूल गए वो देने के लिए मैं आया हूँ। पर वो क्या है? भगवद गीता का ज्ञान, आध्यात्म, जो भक्ति है वो। तो प्रभुपाद जी के योजना से, उनके दूरदर्शी से, जो रथ यात्रा महोत्सव जगन्नाथपुरी में होता है, जो कलकत्ता में बड़े विशाल मात्रा से होता है, वो तो सारे विश्व भर में हो रहा है। और लंदन में ही लंदन में हर साल बहुत भव्य रथ यात्रा का महोत्सव होता है। तो कई बार जो ब्रिटेन से लोग आते थे, अंग्रेज लोग बोलते कि आए भारतीय लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा बंद करनी चाहिए। वास्तव में मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान का स्वयं का रूप है। और जब भगवान को आप प्रार्थना करते हैं तो वही मूर्ति में प्रकट होते हैं, पर वे समझ नहीं पाए उसको। बोले कि भारत में मूर्ति पूजा बंद कर देंगे, पर प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव इंग्लैंड में किया तो इंग्लैंड में मूर्ति पूजा चालू हो गई, इंग्लैंड में मंदिर बन गए। और जो इंग्लैंड के लोग थे रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी की कृपा लेने के लिए दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो यह जो अगर भारत की असली महानता है, अगर हमें प्राप्त करनी है, समझनी है और दुनिया को समझानी है, तो जो उसका आध्यात्म है वह है। और आध्यात्म कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, उससे बड़े आसानी से हम भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। और जब भगवान के संपर्क में उनके हरि नाम से आते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और इसके द्वारा न केवल भारत की आध्यात्मिक प्रगति होगी पर भौतिक प्रगति भी होगी, क्योंकि भारत का आध्यात्म के खोज में सारे विश्व भर से लोग आते हैं। अगर हम कलकत्ता मंदिर की ओर से हर हफ्ते के एंड में यहाँ से मायापुर का टूर ले जाते हैं, तो मायापुर जो है, अगर 30 साल पहले 40 साल पहले आप जाए थे वहां पर पूरा जंगल था, पर प्रभुपाद जी ने उसको इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना दिया और वो सारी जगह पूरी तरह से विकसित हो गई है। और क्यों ही है? क्योंकि आध्यात्मिक रिसोर्स था, उसको यूज किया, उसके द्वारा भौतिक प्रगति भी हो गई। तो ये जो हरिनाम है इसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान है और भगवान के संबंध जो आनंद है वह हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये केवल भावुकता नहीं है, केवल धार्मिकता नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उसकी शक्ति के बारे में जो वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो है कैसे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च करके क्या संशोधन प्राप्त किया है।
Historical and scientific knowledge as they are for its founding loud sounds and produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra War, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day
weapons,
are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on three groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University.
जो वीडियो बता रहे हैं कैसे ध्वनि में बड़ी शक्ति है. आपने देखा वो ग्लास था, अचानक टूट गया. क्यों टूट गया? ध्वनि की शक्ति के द्वारा. जब पहली बार वैज्ञानिकों ने ऐसे हवाई जहाज बनाए जो साउंड का स्पीड है उससे अधिक स्पीड के, जब हवाई जहाज आसमान जा रहे थे तो धरती पर जो घर थे घर की खिड़कियां टूटने लगी, क्योंकि वो ध्वनि की शक्ति है, वाइब्रेशन की शक्ति है. ये तो केवल भौतिक वाइब्रेशन की शक्ति है, जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन है, आध्यात्मिक ध्वनि है, उसकी शक्ति और उससे बड़ी विशाल है. और वैज्ञानिक, आपने जैसे देखा कि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक संशोधन हुआ, तो पीएचडी की स्टडी हुआ, पीएचडी की हुआ उसके बारे में कि जब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है. तो तीन प्रकार के लोग थे उसमें. एक व्यक्ति कुछ भी जप नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई भी मनोगणित अरे 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 कुछ भी जप कर रहा है, जो भी मन में आए वो, और तीसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है. तो उसका संशोधन का फल क्या निकला? स्ट्रेस, डिप्रेशन और एडिक्शन, एडिक्शन मतलब बुरी आदतें, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कम होती है. और जो जो सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव थॉट्स, वो बढ़ते हैं. और ये तो केवल विज्ञान का संशोधन है, पर ऐसे अनेक चमत्कारी कहानियां हैं जिसकी व्यक्ति के हृदय में से परिवर्तन हो गया है. तो मैं एक कहानी बताती जो ये प्रवचन है सुविराम दूंगा. अमेरिका जिसे जो इस्कॉन है सारे विश्व भर में प्रचार करता है, एक प्रचार जो है वो है जेल में हम करते हैं. तो इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री जो है वो जेल में जाके जो कैदी है उनको प्रचार करते हैं. तो अमेरिका में जो इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री है वो जेल में प्रचार कर रहे थे, तो तभी एक युवक था क्रिस मैथ्यूज नाम का, उससे संपर्क हुआ भक्तों का. तो ये जो क्रिस था अमेरिका में जन्म हुआ, उसका अमेरिकन ही था. तो जब नौजवानी में वो ड्रग्स में लग गया और ड्रग्स के नशे में जब ड्रग्स में जब फंस गया तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति साधारण से बुरी आदत में लग जाता है तो एक बुरी आदत दूसरी बुरी आदत जाती है. तो ड्रग्स में लग गया, उसके बाद चोरी करने लग गया क्योंकि ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए. वो चोरी करते करते वो एक बार पकड़ा गया, और पकड़ा भी कैसे गया, वो एक ड्रग्स की दुकान में चोरी करने के लिए घुस गया और वहीं पर ड्रग का ओवरडोज दे लिया, बेहोश हो गया. जब होश में आया तो वो देखा कि जेल के हॉस्पिटल में था वो. तो उसके बाद में जब उसको जेल में डाला तो उसके पहले उसका विवाह हुआ था, उसकी दो छोटी कन्याएं थी. तो जेल में उसको उसको 10 साल की सजा दी गई, बहुत चोरियां की थी उसने. बड़ा हताश हो गया, बोला कि आई विल नेवर हैव एनीथिंग टू डू विद गॉड इन माई लाइफ, व्हाई डिड ही डू दिस टू मी. भगवान ने ऐसे क्यों किया, मैं भगवान का कुछ भी नहीं करना चाहता, रखना चाहता। पर जब उसने देखा जेल में रह रहा था कि जेल में साधारण बाकी जो कैदी थे वो कहीं नम्र प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं थे, क्रोधी थे और गुनेगार थे, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। उसके ऊपर से ड्रग्स का नशा था, उसको ड्रग्स का आदत था, तो ड्रग्स नहीं मिल रहा था उससे भी मन पागल कर रहा था उसको। तो ये अमेरिका में जो भारत से थोड़ी नियम पद्धति अच्छी है, नियम पद्धति अच्छी है मतलब क्या है, अगर कोई गुनाह करता है तो उसको पकड़ लेते हैं, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या, उसको जेल में डालना पड़ता है। तो अमेरिका का सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री जेल इंडस्ट्री है, इतने लोग आप पकड़ते हैं जेल में डालते हैं। तो जैसे अगर आपको कुछ अभी कोई टेंडर देना है कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, हमको ये बिल्डिंग बनानी है, कौन से बिल्डर हमको बिल्डिंग बना के देंगे, तो अमेरिका में जेल कौन चलाएगा इसके लिए सरकार टेंडर देती है, कौन चलाएगा। तो फिर क्या है कि इतने जेल है, इतने लोग उन्हें जेल में है, तो फिर अभी जेल के लोगों को सुधारेंगे कैसे। तो जानते हैं कि अगर हम भगवान को नहीं लाएंगे सुधारना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए अलग अलग धर्म के लोगों को वो जेल में आने देते हैं। तो क्योंकि ये क्रिश्चियन था तो जब वो बाइबल पढ़ने लग गया, तो कुछ बाइबल के स्टडी ग्रुप से जेल में कुछ क्रिश्चियन आके उनको सिखाते थे। तो दो तीन महीने कुछ ट्राई किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक कुरान स्टडी ग्रुप था वो ट्राई किया, फिर उसके बाद में कुछ अमेरिका में जैन बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय, तो बुद्धिस्ट का कुछ ध्यान करने का प्रयास करवाना, ऐसे अलग अलग विधियां दो साल तक उसने प्रयास किए। और दो साल के बाद जितना मिजरेबल, जितना दुखी पहले था उतना ही दुखी था, कुछ प्रगति नहीं की। उस समय हृदय के अंतकरण से उसने बड़ी तीव्रता से पुकारा, हे भगवान अगर यदि आप हो तो कृपया मुझे मदद करो। जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी हमेशा प्रार्थना सुनते हैं। कुछ दिन बाद जब वो बाइबल का लेक्चर अटेंड कर रहा था, उसके बाद में जो विद्यार्थी सहज कैदी था, वो विद्यार्थी नहीं, उसने अपनी बाइबल खोली तो वहां पे एक भगवद्गीता के कार्यक्रम की पर्ची पैम्फलेट था। तो कार्यक्रम हो चुका था पर वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड्रेस था, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो वाला एड्रेस था उसने एड्रेस लिखा, पे खत लिखा और उसको खत से भगवद्गीता आ गई। और जब भगवद्गीता उसने पढ़ी पहली बार तो उसको लगा कि ऐसे कोई घुटन होने वाली जगह हो, उसने ठंडी और फ्रेश हवा आ जाती है जैसे, उसको इतना स्पष्ट था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं वास्तव में भगवान का सेवक हूँ और भगवान की सेवा छोड़ के स्वतंत्र रूप से भोग कर रहा हूँ, इसे दुखी हो रहा हूँ। और भगवान अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और वो जेल में ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गया, जेल में वेजिटेरियन बन गया, जेल में जो जेल का अन्न मिलता था उसको, वो कृष्ण का चित्र था भगवद्गीता में, उसको कृष्ण को चित्र को अर्पण करके भोग चढ़ा के प्रसाद ग्रहण करने लगा। और जेल में उसे जो काम दे रहे थे वो उसने लगा कि मैं कर्मयोग की भावना में भगवान की सेवा के लिए करूंगा। और उसी कारण वो उसकी जेल की डायरी में लिखता है कि मैं जेल के अंदर था पर मैं खुद को सब अपनी जिंदगी में सबसे अधिक मुक्त महसूस कर रहा था। क्यों मुक्त महसूस कर रहा था? क्योंकि मन की जो वासनाएं थे उससे मैं मुक्त हो गया था। और बाकी सब जो कैदी थे वो देख रहे थे, तुम हम जो काम करते हो वही करते हो, हम जहां रहते हो वहीं रहते हो, और तुम इतने संतुष्ट शांत लग रहे हो, क्या राज। और फिर ये जो क्रिस जो कभी भारत में नहीं आया था इसके पहले, वह जो भारत के भगवद्गीता का ज्ञान है उसके प्रवचन बाकी कैदियों को देने लग गया। और जब उसको जेल से रिलीज कर दिया गया तो जेलर था बोले कि आप जब तक थे जेल में बाकी सब कैदी बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे, अभी आप चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बोले मैं आऊंगा वापस और उनको प्रवचन देते रहूंगा। तो वो जब घर चला गया, तो पहुंचा तो उसने पहले के मिलन के बाद अपनी दोनों बेटियों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिखाया। वो बोला कि जब वो भी मेरी बेटी है नौजवानी में आ जाएगी तो वो भी जो नौजवानी के वासना है उसमें फंस जाएगी, तो वासनाओं से बचना है उसके लिए जो उसको मार्ग है, जो टेक्नोलॉजी है, ये है हरिनाम का जप सिखाया। फिर भी उसको हृदय से लग रहा था कि मुझे और कुछ करना चाहिए, मैं जेल में फंसा हुआ था, सड़ रहा था, और भगवान ने उनके भक्त को मेरे जीवन में भेजा, संदेश को भेजा, मुझे कृतज्ञता से भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर उसको प्रेरणा मिली कि मेरे जैसे इतने सारे कैदी जेल में हैं, मैं जाके उनको प्रेरणा देता हूँ। और अभी जो अटलांटा अमेरिका का देश, अमेरिका का प्रांत है, अटलांटा में वो प्रिजन मिनिस्टर है, मतलब जेल जेल में जाके प्रवचन देता है और प्रेरणा देता है। तो यह परिवर्तन है जो हरिनाम का हृदय है, प्रिजनर टू प्रिजन मिनिस्टर, कैदी से कैदी को सुधारने वाला व्यक्ति, ऐसा परिवर्तन। और ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कहानियां जो है, जो सारी कहानियां को संकलन करके एक सुंदर किताब बनाया है, उसका नाम है होली जेल, पवित्र कैद, होली जेल। कैद में जाने के बाद लोग हृदय कैसे परिवर्तित हो गया, तो यह हम सबको शायद उस एक्सट्रीम तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन भले ही अच्छा चल रहा हो, पर हम उसको और अच्छा बना सकते हैं हरिनाम की शक्ति के द्वारा। और हरिनाम का जो जप है वो बड़ा कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। तो अभी हम इसको एंड करने के लिए वी जस्ट हैव अ 3 मिनट मेडिटेशन एक्सपीरियंस। मेडिटेशन एक्सपीरियंस में क्या करेंगे हम, तो जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन का जो ध्यान होता है उसका भाव क्या है, जैसे हमारा हाथ है उसके 5 उंगलियां है, इन सब डिस्ट्रीब्यूटिंग, और जो कुछ मालाएं दे रहे हैं तो वो हमको ध्यान में मदद करेंगे। जैसे हाथ है वो 5 उंगलियों से उससे संबंधित है, वैसे ही जो हमारा मन है 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है, संबंधित है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च ज्ञानम रसनम एवं अधिष्ठान मनश्चायम विषयान उपसेवते। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मन है ये 5 इंद्रियों से कार्य करता है। तो अगर हम मन को शांत करना है तो मन के लिए दवाई चाहिए, तो मन के लिए किसी डॉक्टर के पास दवाई नहीं है। स्ट्रेस आता है तो कोई दवाई नहीं है, पर मन की जो दवाई है वो हरिनाम है। तो जब हमको हरिनाम की दवाई लेनी है, मन को लगाना है हमें, पर मन को कैसे लगाते हैं, हमारे इंद्रियों को लगा के। तो इसीलिए जब हम अभी कीर्तन करेंगे, जब हम जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम मन में कर सकते हैं, पर मन में जब हम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर घूम सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो जो होता है कि हमारी जिह्वा लग जाती है, जब में जिह्वा साथ साथ लगती है हम सुनते हैं तो हमारा कान लग जाता है, कर्ण लग जाता है, और जब हमारे पास माला होती है तो हमारा जो स्पर्श इंद्रिया है वो भी लग जाती है। और जब हम जप कर रहे हैं तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्वनि में शक्ति है, ध्वनि से हमारा मन शांत हो जाएगा। और अगर मन का स्वभाव है कि मन इधर उधर इधर उधर भागेगा, जैसे आपके सभी माता पिता है, आपको छोटा बालक है वो नटखट है, यहाँ पे बालिका है बिल्कुल नटखट नहीं है, शांति से बिल्कुल श्रवण कर रही है, ये बहुत रेयर है। पर हमारा जो मन है एक बालक के समान होता है, जो बालक के समान होता है इधर जाएगा उधर जाएगा, तो क्या माता पिता क्या करती है, प्रेम से पर जेंटली बट फर्मली, प्रेम से पर अच्छी तरह से वापस लेके आते बालक को, उसे जब मन इधर भागेगा लेके आओ वापस, हरि नाम में लगाने का प्रयास करो, वापस जाएगा वापस लेके आओ। और अगर हम इस तरह से मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो ये शक्ति है हरिनाम में, ये ऐसी शक्ति है जो विज्ञान का न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें भी नहीं है। क्या शक्ति है वो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वह एक सारे विश्व सारे शहर को विध्वंस कर सकता है, पर एक व्यक्ति के चिंता का नाश नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति की चिंता का, एक व्यक्ति के स्ट्रेस का, एक व्यक्ति के डिप्रेशन का, एक व्यक्ति के एडिक्शन का नाश नहीं कर सकता है। वो शक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब में नहीं है, पर वो शक्ति हरिनाम में है। तो आप में से कितने भक्तों कितने लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र पता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ इसको, तो आपको जो इंग्लिश में आएगा यहाँ पे,
helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University.
So, we will display it here and then you can see it also.
The Hare Krishna Maha Mantra helps reduce bad habits and addictions. Hare Krishna Maha Mantra.
जी में तो जो हम जप कर रहे हैं तो कुछ और विचार करने की जरूरत नहीं है, जो माला है वो आप देखेंगे कि माला के एक विशेष ओके जिनको माला मिल नहीं है आप आपके उंगलियों पे जप कर सकते हैं, जिनके पास माला है वो आप एक विशेष मणि देखेंगे माला में, उसको गुरु मणि कहते हैं या कृष्ण मणि कहते हैं, तो उसके अगले मणि से हम शुरू करते हैं। तो अगर हम पूरा जप करेंगे एक माला तो उसको 15 मिनट लगेंगे, उतना समय हमारे पास नहीं है, तो हम 1/4 माला करेंगे आज, उसको अराउंड 3-4 मिनट लगेगा। तो एक मणि पे हम पूरा मंत्र बोलते हैं, फिर अगले मणि पे, और जब हम यह भगवान को हमारे हृदय मिलना चाहते हैं तो इसलिए जो मणि है इसको हम हमारी ओर लेते हैं, ऐसे नहीं कि उसको मणि को हमसे दूर लेके जाते हैं। तो जो गुरु मणि है उसको आप अपनी ओर रखिए और फिर उसको अपनी ओर खींचिए आप अगले माला को, अगले मणि को, और कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मणि पे एकाग्र हो जाए। तो उसके पहले हम सब 5 बार डीप ब्रेथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे, थोड़ा मन पे शांत हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। तो 5 बार आप गहरी सांस लीजिए, प्रणाम मंत्र बोलूंगा और फिर उसके बाद ये जब मैं जप कर बोलूंगा तो आप मेरे साथ दोहराइए, और ज्यादा जोर से नहीं ताकि हमारे बाजू में जो है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इतना धीरे भी नहीं कि हम शांत खुद भी सुन नहीं पाए। हरे कृष्ण सॉफ्टली नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम है। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी मैं विशेष शून्यवादी पाश्चात प्रेषिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास अति गौर भक्त कृपया मेरे साथ दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you.
जो meditation है, ध्यान है, इससे हमारे मन को संतुलन प्राप्त होता है. जैसे सागर में कोई नाव होती है तो सागर में तो लहरें आती रहेगी और लहरों के कारण वो नाव ऊपर नीचे होते रहेंगे. तो अगर नाव को स्थिर करना है तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सागर की लहरें रुक जाएगी, वो कभी नहीं रुकेगी. पर अगर हम नाव को एक लंगर से बांध देते हैं तो फिर लंगर के प्रभाव से नाव स्थिर हो जाती है. ठीक उसी तरह हम सब इस भौतिक जगत के सागर में हैं और लहरें आती रहती हैं. सुख दुख मान अपमान संपत्ति विपत्ति स्वास्थ्य बीमारी आनंद क्लेश ये सब आती रहती है और ये लहरें हम कभी रोक नहीं पाएंगे. पर अगर हमारे मन को जो भगवान सबसे लंगर है अगर भगवान से हम जप के द्वारा जोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि ये लहरें आएगी पर उससे द्वारा हम ऊपर नीचे जो हो गए जितना हमारा भगवान से संबंध और हो जाएगा स्थिर हो जाएगा उतना हमारा मन स्थिर हो जाएगा. और उससे जो जीवन के ऊपर नीचे होते रहता है उसको हम स्थिरता से सामना कर सकेंगे और हम अंतरंग आनंद जब प्राप्त करते हैं तो दुनिया की समस्याएं है वो कम हो जाती है छोटी हो जाती है. ऐसे कोई व्यक्ति दो गगन चुंबी मारते हैं और उसके बीच में चल रहा है तो उसको लगता है मैं इतना छोटा हूँ ये बीमारी इतनी बड़ी है. पर वही व्यक्ति अगर हवाई जहाज से जा रहा है उसको ऊपर उठा लेते हैं तो वही जो इमारतें हैं इतनी छोटी छोटी लगती है. तो हमारे जीवन में अलग प्रकार की समस्याएं आती है तो हम अगर अकेले हैं तो समस्याएं बड़ी विशाल लगती है. पर भगवान के जप के द्वारा हमारी चेतना को ऊपर उठाया जाता है. तेषाम अहम समुद्धरता मुझे संसार सागर. जब भगवान के शक्ति के द्वारा हम जब ऊपर उठ जाते हैं तो हमें देखता है कि भगवान अगर मेरे साथ है तो समस्या क्या बड़ी चीज है वो चली जाएगी. तो हमारी जो विचारधारा है ऊपर उठ जाती है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो शरीर है उसमें समय नहीं है हमें जप के लिए. जप के जो समय है वो कोई जप के नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा समय है दो चीजों में बहुत जाता है. हम हमेशा हमारे समय की जो विचारधारा वो हम हमारे कार्यों से करते हैं. मुझे सुबह ये कार्य करना है, दोपहर को ये कार्य करना है, शाम को ये कार्य करना है. पर कार्यों के साथ साथ विचारों में हमारा बहुत से समय चल जाता है. अगर मान लीजिए अगर आपको बिजनेस में कुछ चिंता है तो चिंता से कितना समय जाता है हमारा. हमारी चिंता के लिए कोई समय नहीं होता है कि रोज शाम को 4:30 से 5 में चिंता करूंगा. चिंता एक हमेशा बैकग्राउंड नॉइज के समय चलती रहती है. जैसे अगर आप शहर में रहते हैं तो बैकग्राउंड ट्रैफिक का नॉइज होता है, बैकग्राउंड नॉइज के समय चलती रहती है और वो हमारी मेंटल एनर्जी को सक कर देती है, मानसिक शक्ति को ह्रास कर लेती है वो. पर जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो चिंता दूर चल जाती है. क्योंकि हम समझते हैं कि भले ही ये चिंता का जो कारण है उसमें मेरा नियंत्रण नहीं है पर भगवान का नियंत्रण है. भगवान की श्रद्धा के द्वारा हम चिंता को चिंतन से रिप्लेस कर सकते हैं. तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपको जब से आपका वर्क टाइम चला जाएगा. क्या चला जाएगा, आपका वही टाइम चला जाएगा, आपका चिंता का जो समय है वो समय चला जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आपके पास जो समय लगता है उससे अधिक समय आपके पास है। एक कवि ने फरमाया है कि भगवान की ओर से बोल रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर आप कहते हो मुझे इतना सारा काम है, मुझे आपके जब के लिए समय नहीं है, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में, मुझसे तो तुम्हारा काम करोगे मैं मेरे धाम में रहूंगा, मैं मेरे भक्तों का लीला करूंगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, मैं तुम्हारे काम में आ जाऊंगा, तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुम्हें मदद करूंगा। ये बड़ा प्रायोगिक है, तो आप जो चाहते हैं वो आप माला ले सकते हैं और आप जप कर सकते हैं। और जो कलकत्ता में इस्कॉन का केंद्र है ये आपकी ही सेवा के लिए है, और अभी एक छोटा मंदिर है, विश्व भव्य मंदिर बनाने वाले हैं हम, और हर साल एक भव्य रथ यात्रा का महोत्सव होता है जुलाई में। जुलाई में कब डेट? 4 जुलाई को है। तो उसके लिए हम आपको व्यक्तिगत रूप से बाद में इन्विटेशन भी देंगे। पर अभी मैं खुद ही समराइज में जो बोला 3-4 पॉइंट मैंने जो बताया कि भारत की महिमा आपकी दृष्टि से कितनी संपत्ति, जिसके सारे विषयों से लोग आए, फिर वैज्ञानिक दृष्टि से हमने देखा गणित फिजिक्स इसमें कितनी महिमा थी, और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्या विशेषता देखी हमने कि तंत्र ज्ञान के द्वारा बाहर का जगत नियंत्रण कर सकते हैं, पर अंदर का जगत नियंत्रण करना ये तंत्र ज्ञान के बाहर है, वो आध्यात्म के द्वारा ही होता है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान भारत में है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण हम देखते हैं समाज में समस्याएं आई है काम क्रोध लोभ के कारण, और ये काम क्रोध लोभ का नियंत्रण जब भगवान से संपर्क होता है तो असली आत्म में मिलता है, और उससे हम काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाते हैं। जो भौतिक मनोरंजन है वो पेन किलर के समान है, जो भक्ति और हरिनाम है वो असली दवाई के समान है। और जो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में जाकर प्रचार किया और हजारों लोगों ने स्वीकार किया, हमने देखा वो क्रिस मैथ्यूज कहानी, कैसे कैदी से कैद को सुधारक करने वाला व्यक्ति बन गया, और फिर कैसे जो ध्यान है वो हमारे मन को शांत करने के लिए एक लंगर है, और इसके द्वारा हम सब अंतरंग सुख प्राप्त करके समस्याओं के पर जपरे जाके अंत में हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा सब आयोजकों को, मुझे ये मौका दिया भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप समाज प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।
चरणदास जी, आपने जो ज्ञान हमें दिया उससे हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे और इस दुनिया को और बेहतर रहने लायक बनाएंगे। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रण करूंगा सतीश अग्रवाल जी को। इसके पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से चेतन जी के लिए हमें स्वागत करें, और आज के होस्ट ओपी मनोरिया और सतीश अग्रवाल जी के लिए भी मैं तालियां चाहूंगा। थैंक यू सारी लोग सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं प्रभु स्वामी जी चेतन राज जी का उन्होंने